ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तम अद्भुतम, आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की। तो आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी है, उस अवसर पर, इस अवसर पर हम लोग भगवान के जन्म संबंधित कुछ लीलाओं का श्रवण करेंगे। तो भागवत महापुराण के दशम स्कंद के तीसरे अध्याय से श्लोक 9 से 12, इन चार श्लोकों के ऊपर विचार किया जाएगा। राधिका कनाई, यू ऑल शुड हैव क्लास इन ऑडिटोरियम, रॉन्ग प्लेस, टू मच नॉइज, आई कैन स्पीक इन नॉइज। तम अद्भुतम बालकम अमुचेक्षणम चतुर्भुजम शंखगया गदायुधायुधम श्रीवश्य लक्षम गलसाविकासुभम पीतांबरम सांद्रपयोदशोभगम महारहैवे दुर्कीटकुंडलम त्विषा परिशक्त सहस्रकुंतलम उदामकांचंगदकंकणादिभिः विरोचमानं वसुदेव यक्षत सविस्मयोत्फूल विलोचनो हरिं सूतं विलोक्य अनकदुन्दविस्तथा कृष्णावतारो सभास्त्रं सस्पृशान् मुदादिजेभ्यो ययुता प्लुतो गवा। हरे कृष्णा। सब साउंड उधर कर दिया है, तो बी दिस साइड, ये चालू है। ओके, कोई पढ़ सकता है? टू मच नॉइज। हरे कृष्णा। जो दर्शन कर रहे हैं कृपया शांति से दर्शन करें, कोई बात ना करें। सिक्योरिटी वाले आप लोग ज्यादा हल्ला कर रहे हो, सिक्योरिटी वाले आप ज्यादा बोल रहे हो, आप बोलो मत, इशारा के द्वारा लोगों को आगे करो, कोई बात ना करे। तम अद्भुतम, उस अद्भुत बालकम, बालक को अंबुज इक्षणम, कमल जैसे आंखों वाले, चतुर्भुजम, चार भुजाओं वाले, शंख गदा आदि, चार हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा कमल लिए हुए, उद आयुधम, विभिन्न आयु, श्रीवत्सलक्षम, श्रीवत्स के अलंकृत, गलशोभिकौस्तुभम, उनके गले में वैकुंठ लोक में प्राप्त होने वाला कौस्तुभ मणि था, पीताम्बरम पीला वस्त्र धारण किए थे, सांद्रपयोद सौभगम अत्यंत सुंदर तथा श्यामल रंग का। एक ही श्लोक का शब्दार्थ कर करके अनुवाद और तात्पर्य। तब वसुदेव जी ने उस नवजात शिशु को देखा जिनकी अद्भुत आंखें कमल जैसी थी और जो अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म चार आयुध धारण किए थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह था और उनके गले में चमकीला कौस्तुभ मणि था। वह पीताम्बर धारण किए थे, उनका शरीर श्याम घने बादल की तरह, उनके बिखरे बाल बड़े बड़े था, उनके मुकुट और कुंडल असाधारण तौर पर चमकते वैदुर्यमणि के थे। वे करधनी, बाजूबंद, कंगन तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण अत्यंत अद्भुत लग रहे थे। तात्पर्य, अद्भुतम शब्द के समर्थन में नवजात शिशु के अलंकरण तथा ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है, वराहावतम संसितामुद सुंदरांगम, भगवान का सुंदर स्वरूप श्याम रंग के घने बादलों जैसा असित मतलब श्याम तथा अंबुज मतलब बादल है। चतुर्भुज शब्द से स्पष्ट है कि कृष्ण पहले चार हाथों सहित भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। मानव समाज में कोई भी सामान्य शिशु आज तक चार हाथों वाला उत्पन्न नहीं हुआ, और क्या पूरी तरह बड़े बालों से युक्त कभी कोई शिशु उत्पन्न हुआ है? इसलिए भगवान का आवरण सामान्य शिशु के जन्म से स्रोता भिन्न है। वैदुर्यमणि कभी नीला, कभी पीला तो कभी लाल दिखता है और वैकुंठ में उपस्थित है। भगवान का मुकुट था कुंडल, इसी विशेष मणि से अलंकृत थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुर्जन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान के आविर्भाव के विभिन्न कारण हैं, उन कारणों का वर्णन भागवत महापुराण में अन्य स्थानों पर अन्य प्रकार से किया गया है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान अपने श्रीमुख से अपने आविर्भाव का कारण बतलाए हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे। भगवान के अवतार के दो प्रकार के कारण हैं, एक बहिरंग और एक अंतरंग। तो ये बहिरंग कारण है, असुरों का विनाश करने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, किसी भी शक्ति के द्वारा भगवान असुरों का विनाश कर सकते हैं। साधुओं का रक्षा, जो साधु है उसके साक्षात रक्षक भगवान है। भक्ति देवी साधुओं का रक्षा कर सकती है और वे साधु लोग धर्म का स्थापना करेंगे। तो सब प्रकार से भगवान को आने का कारण नहीं है। लेकिन ये बाह्य कारण बताया गया है। वैसे ही भागवतम में शुद्ध गोस्वामी भागवत के प्रथम स्कंध के तीसरे अध्याय में भगवान के आर्य का कारण बताए हैं। कहते एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती जुगे जुगे। इंद्रारी व्याकुलम लोकम, जब इंद्र अपने अरि अपने शत्रु असुरों के अत्याचार से व्याकुल हो जाते हैं, तो भगवान व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए आते हैं। वैसे ही आगे प्रथम अध्याय के आठवें अध्याय, प्रथम स्कंध के आठवें अध्याय के श्लोक संख्या 32 से 36 के बीच में माता कुंती बतलाई है कि भगवान आप क्यों आते हैं। कहती हैं, केचित आहुर अजम जातम पुण्य श्लोक कीर्तये जदहो प्रियस्यावाय मलयस्य चंदनम। हे भगवान, आप अजन्मा हैं, फिर भी जदु जैसे भक्तों का मान बढ़ाने के लिए आप वैसे ही आत प्रकट होते हैं जैसे मलयगिरी का मान चंदन बढ़ाता है। आगे भगवान कहते हैं, अपरे वासुदेवस्य देवक्या याचितो भयात् अजसा तम अस्य क्षेमाय बधाय च सुरादुषाम। दूसरे लोग कहते हैं कि देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना किया था, उनके प्रार्थना के चलते आप उनके पुत्र के रूप में आए थे। हालांकि आप अजन्मा हैं, फिर भी आप सामान्य बालकों के समान जन्म लेकर के भक्तों का रक्षा किए और असुरों का संहार किए। अन्यत्र कहा गया है, भारावताराण्याने भवो नाव इवोदितो सिद्ध्यंत भूरि भारेण जातो ही आत्महुवेरतः। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब पृथ्वी पर असुरों के द्वारा अत्याचार से जब भार बढ़ जाता है, तो असुरों का विनाश कर करके और पृथ्वी का रक्षा करने के लिए आप आते हैं। तो इस प्रकार से कई एक भक्तों ने कई एक प्रकार से भगवान के आविर्भाव का कारण बतलाया है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी असली कारण बतला रहे हैं। उसमें सब कुछ आता है। कहते हैं, अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देह आस्थित भजते तादृशी क्रीणा या श्रुत्वा मत्परो भवेत। कहते अनुग्रहाय भूतानाम, प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए भगवान आते हैं। सब लोग अनुग्रह अलग अलग प्रकार से देखते हैं। किसी को खूब धन मिल जाता है, अरे भगवान का कृपा हम पर हो गया है। किसी को धन देने के लिए, किसी को संतान की उत्पत्ति हो जाती है, अरे भगवान का बड़ा कृपा है। ये सब बाह्य कारण है। तो अनुग्रहाय भूतानाम, जीव गोस्वामी कहते हैं अनुग्रहाय भक्तानाम, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भूतानाम, तो उसी को लेकर चलेंगे। अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देह आ स्थित, आप प्राणियों पर कृपा करके मानुषम देह आ स्थित। इस बात को समझना चाहिए। अरे क्यों स्ट्रगल कर रहा है आपके पीछे वाला, सो क्यों रहे हो, खड़ा हो जाओ। मानुषम देह आ स्थित मतलब इसको समझना चाहिए कि मोटा मोटी अर्थ हुआ कि भगवान मनुष्य के देह में स्थित हुए, यानी मनुष्य के रूप में आए। तो दूसरा प्रश्न उठता है, पहले मैं सिद्धांत क्लियर करता हूं, बाद में कथा में जाएंगे। जब भगवान मनुष्य में आए, मनुष्य के देह में आए, तो मनुष्यों में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि होती है, तो भगवान में भी हुआ होगा। जीव गोस्वामी कहते हैं नहीं। वैष्णव तोषणी में इसका वर्णन जीव गोस्वामी कहते हैं कि मानुषम देह आस्थित, भगवान मनुष्य के देह में स्थित दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वे मनुष्य नहीं है। जो भगवान को मनुष्य समझता है वो मूर्ख है। अवजानंती मा मुढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम, भगवान कहते हैं जब मनुष्य के रूप में आता हूं तो मूर्ख लोग मुझे मनुष्य समझते हैं, लेकिन परम भाव जानंतो, जो परम भाव लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, वे मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूं। तो भगवान स्थित होते हैं, मनुष्य के समान आकार लगता है, लेकिन मनुष्य नहीं है, है? मानुषम देहम अस्थित, स्थित मतलब स्थित हो जाना और अ मतलब नहीं। मनुष्य जैसे लगते हैं, लेकिन मनुष्य के देह में, यानी मनुष्य के देह से जो काम होता है उसमें भगवान स्थित नहीं रहते हैं। वो सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान, हमें और हमारे देह में अंतर रखते हैं। मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा देह, यदि मेरा देह है मतलब मैं देह नहीं हूं, मैं देह से अलग हूं। लेकिन भगवान सबको खुश करना चाहते हैं, तो मूर्खों को भी खुश करना चाहते हैं। जब बहेलिया ने बाण मारा तो भगवान शरीर छोड़ दिए, छोड़कर चले गए। एक बार किसी ने प्रभुपाद से तर्क किया, प्रभुपाद ने कहा नहीं, भगवान अपने सशरीर गए थे, शरीर के साथ गए थे। कहा नहीं, शरीर छोड़े थे, बहेलिया मारा था। तो प्रभुपाद ने कहा इसमें बड़ा बात क्या है, चाहे शरीर छोड़े चाहे शरीर लेकर के गए। हमारा ये अब्दुल टेलर है, नहीं अब्दुल नहीं। प्रभुपाद ने कहा कि दर्जी होता है, दर्जी सबके लिए बहुत कुर्ता बनाता है, एक अपने लिए बना लिया तो गड़बड़ क्या कर दिया, कुछ गड़बड़ किया, एक अपने लिए बना लिया। तो भगवान बहुत शरीर बनाया, एक अपने लिए बना लिया, खुश रहो खुश रहो। लेकिन बात ऐसी नहीं है, भगवान मनुष्य शरीर में अस्थित, मनुष्य शरीर होते हुए भी मनुष्य के हाव भाव विचार उससे वे परे हैं, क्योंकि उनमें और उनके देह में अंतर नहीं है। यहां तक कि मानवीय कार्य करते हैं, भजते तादृशी क्रीड़ा, भगवान जो क्रीड़ा करते हैं वह लीला कहलाता है। जो खेल खेलते हैं वो कैसे करते हैं, भजते मतलब करते हैं, तादृशी ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य करते हैं। मनुष्य सोते हैं, भगवान भी सोते हैं। मनुष्य जगते हैं, भगवान भी जगते हैं। मनुष्य खाते हैं, भगवान भी खाते हैं। मनुष्य भी शादी किए, भगवान भी शादी करते हैं, ठीक मनुष्य के समान। नारद जी को आश्चर्य हो गया था, अरे भगवान 16108 रानियों के साथ द्वारका में कैसे निवास करते हैं। उनको ब्रह्मचारी जी को चिंता हो गया, ब्रह्मचारी क्या काम धंधा है सब करने का, लेकिन उनको चिंता हो गया। तो देखने के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा कि 16108 अट्टालिकाओं में भगवान अपने पत्नियों के साथ में घर गृहस्थी का काम कर रहे हैं, कहीं पर पूजा कर रहे हैं, कहीं पर भोजन कर रहे हैं, कहीं उनकी पत्नियां पास सम्मान कर रही हैं, कहीं पर बच्चों से खेल रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। तो मानवीय क्रीड़ा भगवान की, भयते तादृशी क्रीड़ा। लेकिन यह क्रीड़ा जो है ये मनुष्य का क्रीड़ा नहीं है, ये भगवान का क्रीड़ा है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं या श्रुतवा मत परो भवे। व्यक्ति ऐसे क्रीड़ाओं को सुनेगा, कृष्ण कथा को सुनेगा, तो इस संसार को छोड़कर कहां जाएगा, भगवत धाम को, बैक होम, बैक टू गॉड है। तो वही कथा हम लोग यहां पर आज सुनने जा रहे हैं। श्रुत्वा मत परो भवेत्, यह कथा सुनकर के भगवत धाम को जा सकते हैं। नैमिषारण्य के ऋषियों ने श्रुत गोस्वामी से 6 प्रश्न किए थे, उसमें से एक प्रश्न था देवक्या वासुदेवस्य जातो जस्य चिकित्सय। अरे भगवान कृष्ण तो ब्रजन नंदन श्याम सुंदर हैं, उनका गोलोक अपना धाम है, जैसा कि ब्रह्मा जी कहते हैं गोलोक धाम निज धामनी तलेद तस्य देवी महेश हरिधाम सुते सुतेसु तेते प्रभाव निचया विहिता सजेन गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। गोलोक धामनी निज धामनी, जो गोलोक धाम है वो भगवान का निवास स्थान है, ब्रजनंदन श्याम सुंदर का निवास स्थान गोलोक धाम है। तो गोलोक धाम को छोड़ करके भगवान कैसे आ गए मथुरा में, और अभी देवकी और वसुदेव का बेटा कैसे बने? गोलोक धाम में कृष्ण देवकी और वसुदेव के बेटा नहीं है, वहां पर वो नंद यशोदा के बेटा है। तो नंद यशोदा का बेटा होना समझ सकते हैं, लेकिन देवक्या वासुदेवस्य जातो जस चिकित्सा, ये कैसे हो गया कि वो देवकी वसुदेव के बेटा बन गए? ये प्रश्न था। तो भगवान गोलोक बिहारी हैं। तो इस प्रकार से देवकी वसुदेव के कैसे भगवान पुत्र बने, उन्हीं का हम लोग वर्णन यहां पर करने जा रहे हैं। ये जो भागवत महापुराण है इसमें 12 स्कंद हैं, दशम स्कंद को निरोध कहा गया है, इसमें 90 अध्याय हैं। प्रथम 4 अध्याय को जन्म प्रकरण कहा गया है, जिसमें भगवान के जन्म का वर्णन किया गया है। उसमें भी जो 3रा अध्याय है दशम स्कंद का, उस 3रा में भगवान षड ऐश्वर्य परिपूर्ण ब्रजन नंदन श्याम सुंदर का वर्णन किया गया है। 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, तो भगवान का 6 प्रकार से वर्णन किया गया है 3रे अध्याय में। हनुमान जी सुन रहे हो कि सो रहे हो? सुन रहे हो ना, आराम कुर्सी पर बैठ गए हो तो इसलिए नींद भी आ जाएगी। तो भगवान के 6 ऐश्वर्यों का ब्रजेंद्र नंद ब्रजेंद्र सड ऐश्वर्य पूर्ण कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन। संजय सिक्योरिटी बात मत करो, संजय सिक्योरिटी तुम लोग बात करें कैसे काम करेगा संजय? क्या मैं बोल रहा था? आई कैनॉट स्पीक इन कंसंट्रेशन, बहुत जगह से खोजना पड़ता है ना, कई ग्रंथों से खोजना पड़ता है, सब ध्यान अभी मन शुद्ध नहीं हुआ है ना। तो क्या बोल रहा था? सड़ा ऐश्वर्य पूर्ण ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र नंदन से आम सुंदर षड ऐश्वर्य पूर्ण है भगवान के वैभव विलास में भगवान ब्रजनंदन के रूप में है, और प्रभाव विलास में भगवान देवकी नंदन के रूप में है, लेकिन दोनों षड ऐश्वर्य पूर्ण है। तो उन षड ऐश्वर्यों का वर्णन 6 रूप से किया गया है इस 3रे अध्याय में। यह छिपा हुआ है लेकिन इसको निकालना पड़ेगा, मंथन कर करके, दूध में ही मक्खन होता है लेकिन मंथन कर निकालना पड़ता है, तो निकालना पड़ेगा। तो यह 3रा अध्याय है, इसमें 6 वस्तुओं का वर्णन किया गया है, ध्यान दीजिएगा। जननम वर्णम अस्तोत्रम संत्यावतम गमनम तथा षडविधो भगवान अत्रह तृतीय भी निरूप्यते। तो यहां पर ये छह बातों का वर्णन किया गया है, वह है जनन, मतलब जन्म। भगवान के जन्म का वर्णन इस तीसरे अध्याय में किया गया है। वर्णनम, भगवान कैसे हैं उनके सौंदर्य का भी वर्णन इस तीसरे अध्याय में किया गया है। बात करो कपिल नाटिया वर्णन। उसके बाद स्तोत्रम, वर्णन करने के बाद ये दो हो गया, जनन वर्णम अस्तोत्र। अस्तोत्र दो लोगों ने किया है, पहले वसुदेव जी किए हैं और बाद में माता देवकी ने किया है। तो दो अस्तोत्र हो गया, कितना हो गया गिनो। वो कहां चला गया, मृदंग जब बजाया कहां भाग गया, क्या नाम रविंद्र, किधर चला गया, चलो कितना हुआ, चार हुआ। संतावनम, भगवान देवकी और वसुदेव को संतावना दिए, संतावना दिए, रखो तुम अपने पास चाहे विष्णु को दे दो, संतावना दिए कि कैसे आप लोग पहले प्रजापति पिष्णी गर्भ और सुतपा थे, तपस्या किए, मैं आया, आपने मुझे मेरे समान पुत्र मांगा, मेरे समान कोई है नहीं, तुम्हें तीन जन्म लेना पड़ा। पहले जन्म में मैं आया यज्ञ पुरुष के रूप में, दूसरे जन्म में बामन के रूप में, और तीसरे जन्म अभी आया हूं, मैं वही हूं। इस प्रकार से भगवान संतावना दिए। संतावना देने के बाद कितना हो गया अब तक से, पांच हुआ। अब कहे आप मुझे यहां से ले चलो, गमनम, कहां ले चलो, गोकुल ले चलो। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी 53 श्लोकों में इन छह ऐश्वर्यों का वर्णन किए हैं। श्लोक 1 से 8 के बीच में 8.5 श्लोक में भगवान के जन्म का वर्णन किया गया है। उसके बाद 9 से 12 चार श्लोकों में भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया, भगवान कैसे थे, जैसा कि वसुदेव जी देखे, जैसा कि सुखदेव जी देखे। वर्णनम, सुखदेव जी देखकर वर्णन कर रहे हैं, सेल्फ रियलाइज है ना, हम लोग तो पढ़कर वर्णन कर रहे हैं, सुखदेव जी देख करके देख रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद अस्तोत्रम, वसुदेव जी का श्लोक संख्या 13 से 23 10 श्लोकों में वसुदेव जी ने भगवान से प्रार्थना किया। और उसके बाद 24 से 31 8 श्लोकों में माता देवती ने प्रार्थना किया, और तब उनको भय हो गया, कहा कि प्रभु अपना ये रूप देखा छोड़ दो, अब छोटा बालक बन जाओ, उपसंगरम इमम रूपम, इस रूप को त्याग दो। तो भगवान ने उस रूप को त्याग दिया, लेकिन त्यागने से पहले भगवान संतावना दिए। तो वह श्लोक संख्या 32 से लेकर के और 45 14 श्लोकों में भगवान संतावना दिए। उसके बाद गमन 46 से लेकर के 53 8 श्लोकों में भगवान का गमन के विषय में भगवान बताए, और बाद में वसुदेव जी लेकर के आए गोकुल, गोकुल तक पहुंच करके और पुनः मथुरा आने तक ये 8 श्लोकों में वर्णन किया गया है। इस प्रकार से यह जो अध्याय है भगवान के भगवत्ता को सूचित करता है, सर्वेश्वर पूर्णता को सूचित करता है। अब प्रथम बात है जननम, जन्म। जन्म के विषय में जानना जरूरी है, है? थोड़ा संक्षिप्त में वर्णन मैं करूंगा जन्म के विषय में। देखिए जननम में श्लोक संख्या 1 से लेकर के 8 8.5 श्लोकों में, 8.5 है, 8.5 श्लोकों में जो वर्णन किया गया है उनमें 9 विषय वस्तुओं का वर्णन किया गया है, और ये नौ लोग भगवान के आगमन से पहले पवित्र हो गए, जैसे है प्रथम है अथा सर्वा गुणे पेत कालम परम शोभनम। इन नौ वस्तुओं का वर्णन किया गया है, यथा काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और आत्मा। इन नौ वस्तुएं हैं, यदि इन नौ वस्तुएं शुद्ध हो जाएं तो भगवान वहां पर आ जाते। इन नौ के नौ शुद्ध हो गए थे। काल शुद्ध हो गया था, काल को बड़ा गुस्सा था कि भगवान आते हैं लेकिन भगवान तो कालातीत हैं, सब भगवान आते हैं लेकिन वे सब काल ही है जो सब कुछ को चला रहा है। हम लोगों का शरीर बड़ा हुआ, छोटा हुआ, जो भी हो रहा है, मोटा हुआ, ये सब काल के प्रभाव से, लेकिन भगवान पर काल का दाल नहीं गलता है, तो काल हमेशा नाराज रहता है। तो भगवान काल को खुश करने के लिए जन्म लिए काल में। किस दिन जन्म लिए? अश्विनी तिथि को, काल है काल को, वो शुद्ध काल में अश्विनी तिथि। यहां वर्णन किया गया है कि अश्विनी तिथि कैसी थी, भाद्र मास कृष्ण पक्ष में की अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, चंद्र के उदय होने पर हर्षक नामक योग में दोष स्पष्ट रहित रोहिणी नक्षत्र में भगवान का आविर्भाव हुआ। भगवान चंद्रवंशी हैं इसलिए भगवान रात में आए, भगवान राम सूर्यवंशी हैं तो दिन में आए थे। तो काल को पवित्र होने से भगवान आए। जब तक से हम पवित्र नहीं होंगे भगवान नहीं आएंगे। जब काल को अहंकार था भगवान नहीं आए, लेकिन काल शरण में आ गया तो भगवान उस काल में आए। दिशा, सब दिशाएं पवित्र हो गई थी। पृथ्वी के दो भगवान के दो पत्नियां हैं, भूदेवी और श्रीदेवी। अब पति आ रहे हैं तो पत्नी स्वाभाविक है कि प्रसन्न होगी। जल, सब जल पवित्र हो गए थे, स्थिर जल और प्रवाहमान जल। दो प्रकार के जल होते हैं, जैसे नदियां ये प्रवाहमान जल होते हैं, उसके बाद हृद या नद, तालाब इत्यादि, ये स्थिर जल होते हैं। वो लोग भी शुद्ध हो गए थे भगवान के आगमन पर। उसके बाद अग्नि देवता, कंस के अत्याचार से कोई यज्ञ होम इत्यादि नहीं होता था। अग्नि देवता स्टार्विंग कर रहे थे, भूखे थे बेचारे बहुत दिन से, तो वो भी खुश है कि भगवान आए, अब यज्ञ इत्यादि होगा तो मेरा पेट भर जाएगा। वायु, सब प्रकार से भगवान का स्वागत करने के लिए खुश थे। आकाश, गवाही देने के लिए तैयार थे। और मन सुमन हो गया था। इस प्रकार से नौ तत्व थे जो शुद्ध हो गए थे, तब भगवान आए। इन नौ के क्योंकि भगवान पूर्ण हैं। भगवान का 12 बजे जन्म हुआ था अष्टमी को, लेकिन और जितना काम हुआ नवमी में हुआ है। भगवान गोकुल चल दिए, आविर्भाव हुआ अष्टमी में, लेकिन उनका वर्णन इत्यादि जो है वो नवमी में हुआ। अष्टमी 12 बजे बहुत कम समय, उसके बाद 12 बज के 1 मिनट में हो गया तो नवमी हो गया है ना। तो वह प्रमाणित करता है कि भगवान परिपूर्ण है, क्योंकि जो 9 अंक है वो सब प्रकार से पूर्ण है ना। अल पढ़ेगो 9 का कितना भी गुणा करो, भागा करो, कुछ भी 9 का 9 ही रहेगा। 9 का 2 से गुणा करो कितना हो गया, हुंकारी भरो कितना हुआ, और 8 और 1 कितना हुआ, 3 से गुणा करो कितना हुआ है, 2 और 7 कितना हुआ, 4 से गुणा करो कितना होगा, 3 और 6 कितना हुआ, 5 से गुणा करो कितना हुआ, 4 और 5 कितना हुआ, 6 से गुणा करो कितना होगा, 5 और 4 कितना हुआ, 7 से गुणा करो कितना होगा, 6 और 3 कितना हुआ,
आठ से गुना करो कितना होगा, सात और दो कितना हुआ, नौ से गुना करो कितना होगा, आठ और एक कितना हुआ, हो गया ना। भगवान पूर्ण है, भगवान सब प्रकार से पूर्ण है। भगवान राम दिन में आए थे इसलिए नौमी तिथि को आए थे, भगवान राम कृष्ण रात को आए थे लेकिन नौमी तिथि में सब कार्य किए, प्रकट हुए अष्टमी को लेकिन सब काम नौमी को हुआ, सब काम नौमी को हुआ। तो अब बात था वर्णन करने का, भगवान के सौंदर्य का वर्णन। भगवान अब आ गए हैं देवकी वसुदेव के सामने, वहां पर हैं। और वर्णनम एवं भगवत प्रादुर्भाव ऐश्वर्य रूपेण वीर्य रूपेण भगवंतम अनुवर्णति तद अद्भुतम इति द्वाभ्यम अत्र निवृत सर्वे श्रोतारो वही संवेदन रहिता जाता इति गापितुम पुनः सुकोति कथम। आचार्य गण कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी शुरू में आया हुआ है श्री शुक उवाच पहला श्लोक में, लेकिन जब जब ये छे का ये पढ़ रहा है तो वहां भी मान लेना चाहिए श्री शुक उवाच। तो जनन में सुखदेव गोस्वामी बोले और वर्णन में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वर्णन, तम अद्भुतम। मैं क्लास देता हूं तो प्राय श्लोक पर जाता हूं, तो आप लोग कुछ जानना चाहते हो तो श्लोक को देखो, एक एक शब्दों के बड़ा ही महान अर्थ है, ठीक है ना। हम चलते हैं, आज तो फास्टिंग है, प्रसाद का कोई चिंता नहीं है, चलते हैं कहां तक पहुंचते हैं, हमको एज 10:30 कहीं जाना भी है लेकिन कोई बात नहीं। तम अद्भुतम, अद्भुत, तम मतलब वे भगवान जिनको वसुदेव जी देख रहे हैं, जो वहां पर प्रकट हुए हैं, वे भगवान द्वादश आत्मा हैं। सर्व प्रकाश चैव काल में कालात्मे इंद्रिय नायक आत्मा कार्यम च भूतानि अहं तत्त्वम् उहोत्रयः अक्षरम भगवान चेति द्वादश आत्मा हरि स्वयं। स्वयं हरि द्वादश आत्मा है, इन द्वादश लोगों के जीवन है, आत्मा है, वे भगवान आए हैं। कौन कौन द्वादश हैं, सर्व प्रकाश चैव, प्रकाश फैलाने वाले कौन हैं, कौन प्रकाश फैलाता है, सूर्य। सूर्य कितने हैं, द्वादश। तो द्वादश सूर्यों के कौन आत्मा है, ये भगवान हरि हैं, द्वादश आत्मा हरि स्वयं। इसलिए सूर्य को क्या कहते हैं, नारायण, सूर्य नारायण। उसके बाद काल, कालात इंद्रिय नायक, कालों के भी नायक हैं भगवान। काल कितने हैं, द्वादश मासात्म काल रूप, द्वादश माह, द्वादश माह बारह महीना, बारह महीने होता है ना, एक साल में बारह महीने होता है ना, और बारहों महीने के अलग अलग ठाकुर जी हैं, जैसे कार्तिक के हैं दामोदर भगवान, ऐसे ऐसे। तो बारहों महीने के जो आत्मा जो हैं वे हैं हरि। तीसरा है आत्मा, आत्मा कार्यम च भूतानि अहं तम तम उभयोत्रय। आत्मा भगवान किन किन के आत्मा हैं, भगवान जीव आत्मा हैं, हम लोग हैं उसमें, हम लोग भी उनके ही अंश हैं, भगवान विभू हैं और हम अंश हैं। तो भगवान आत्मा, जीव आत्मा, और सबके दिल में हैं, किस रूप में, परमात्मा। तो ये दो आत्मा हो गए। फिर कार्यम महातत्व, ये भगवान का कार्य है, तो दो और एक महातत्व, तीन हो गया। महातत्व का भी पहले प्रधान रूप में आता है, बाद में ब्रह्मा जी को देते हैं, तो महातत्व सृष्टि के लिए जो भी अवयव हैं, 24 तत्व हैं और काल मिलाकर के 25 हो गया, ये महातत्व, ये तीसरा हो गया। भूतानि, हम लोग जो देह ग्रहण किए हैं, जो भी देह है वो पंच महाभूतों से बना है, ये चौथा तृतीय हो गया। अहम, उसके बाद अहंत्वम, अहंकार, ये पांचवा हो गया। उभौ, प्रकृति और पुरुष, संसार के कंट्रोलर भगवान हैं और प्रकृति भगवान की हैं, तो ये हो गया सात, छह और सात। त्रय, तीनों गुण प्रकृति के, सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण। अक्षर, साक्षात भगवान और परब्रह्म। इस प्रकार से द्वादशात्मा स्वयं हरि, वे हरि आए हुए हैं और वे कैसे हैं, अद्भुत। अद्भुत का मतलब है अलौकिक। जो पदार्थ लोक और वेदों में प्रसिद्ध होता है वह लौकिक होता है, लेकिन और जो लौकिक पदार्थ होता है वो नेत्र गोचर होता है, इंद्रिय गोचर होता है, श्रवण गोचर होता है। ये सर्वसाधारण है, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं लौकिक वस्तुओं को, लेकिन जो अलौकिक पदार्थ है वह आश्चर्यजनक है। यही भगवान का प्रमेय बल है, प्रमाण से भगवान को कोई नहीं जान सकता है। तो ये भगवान अलौकिक है। तो तम अद्भुतम, भगवान अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, इंद्रिय अतीत हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं अतः कृष्णामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, उन भगवान को अपने इंद्रियों से हम नहीं समझ सकते हैं, इसलिए वे अलौकिक हैं। और बालक शब्द का व्याख्या, सभी आचार्यों ने बालक शब्द का व्याख्या किया है, ये कोई सामान्य बालक नहीं थे। प्रश्न उठता है कि भगवान तो चतुर्भुज रूप में आए हैं तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी बालक क्यों कह रहे हैं? राधे कहने खड़ा हो जाओ, तो खड़ा हो जाओ, तो आपको थोड़ा नींद भी आ रहा है, खड़ा हो जाओ। इनको कोई बालक कहेगा? अरे आपको नहीं बोला हूं, कहां जा रहे हैं? खड़ा लो, उदाहरण दे रहा था, उधर चला गया। कौन दिख रहा है उधर? हमारे सामने इधर आओ। इनको कोई बालक कहेगा? अरे बोलो ना, हाँ या ना, ठीक है ना, ये बड़े हो गए हैं। अभी कुछ गलती है, अरे बच्चे के समान क्या बात करते हो, बोलते हैं ना, इतना बड़ा हो गया बच्चे के समान बात करता है, जाओ बैठो, हो गया, बालक तो नहीं है। तो मैं उदाहरण दिया, तो बालक भगवान चतुर्भुज रूप में आए हैं, प्रौढ़ रूप में हैं, अपने वैकुंठ स्वरूप में हैं, नारायण रूप में हैं, लेकिन उन्हें यहां पर सुखदेव गोस्वामी बालक कह रहे हैं। इसका अर्थ समझिए, बालक का अर्थ क्या है? बाले बाले को ब्रह्मा, जिनके छिद्र में ब्रह्मांड निवास करता है वह है बालक। यह वह बालक है जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड है, वह यह बालक है। तो यह अद्भुत बालक है जिनके रोम रोम में। बालक शब्द का दूसरा अर्थ है बालेभ्य कम व्यस्मातम, जिससे गोप बालकों को कह, मतलब सुख। यह सामान्य बालक नहीं है, यह गोप बालकों को, ग्वाल बालों को सुख देने के लिए आया हुआ है, यह वह बालक है। और कह जस्य बाल इति बालक, कह मतलब ब्रह्मा जी भी और बाल मतलब बेटा, ब्रह्मा जी भी जिसके बेटे हैं वह है बालक है, है ना, भगवान के बेटे ब्रह्मा जी है ना, नाभि से निकले थे, वह बालक है। बलभद्रेण साकम खेलताम बालान, जो बलदेव जी के साथ में क्रीड़ा करेगा वह यह बालक है। अन्यत्र लोग अन्य गोस्वामी गण बन गए बा ल क, ये तीनों का आप तोड़ तोड़ करके व्याख्या किए हैं, तो मैं पूरा जब जाऊंगा तो आप सब आधा सो जाओगे आप लोग, तो उधर छोड़ करके अब श्लोक पर ही आगे बढ़ते हैं, इतना ज्यादा अर्थ हो गया बालक का। अंबुज क्षण, भगवान को यहां पर अंबुज इक्षण कहा गया है, मोटा मोटी अर्थ हुआ कमल नयन, अंबुज मतलब कमल और इक्षण मतलब आंख, जिसका आंख कमल के समान हो वो अंबुज इक्षण कहलाता है। ये शब्द बड़ा है, इसको तोड़ते हैं, अंबुज जस इक्षण, अंबुज जिसके आंख में निवास करता है। अंबुज किसे कहते हैं? अंब मतलब समुद्र, अंबा मतलब समुद्र, और ज मतलब उत्पन्न। समुद्र से कौन उत्पन्न हुई थी? लक्ष्मी जी। तो जिनके आंख में लक्ष्मी जी निवास करती हैं वो हैं अंबुज क्षण, यानी जिन पर भगवान का दृष्टि पड़ गया कल्याण हो गया उसका, धनी बनने का सरल तरीका। भगवान के आंख में लक्ष्मी जी निवास करती है, हम लोग क्या देख सकते हैं? और उतना ही नहीं, समुद्र से जो कुछ भी उत्पन्न हुआ था भगवान के आंख में, विष भी भगवान के आंख में है, भगवान देख देंगे तो भी कल्याण हो जाएगा दूसरे रूप में, असुरों को मर जाएंगे देख करके। इसीलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं अंगा निजस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषां तमहं भजामि। भगवान एक अंग से समस्त अंगों का कार्य कर सकते हैं, केवल आंख से ही भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भगवान आंख मारकर कितनों घायल कर देते हैं, सब गोपियों घायल कर देते केवल आंख मार करके। तो अंबुज क्षण, अंबुज यार क्षणम यश्य तम अंबुज क्षण, अंबुजया, क्या सुंदर बात है। जो जल से निकली हुई हैं, यानी लक्ष्मी जी और पृथ्वी जी, माता पृथ्वी वो भी जल से निकली है और लक्ष्मी जी, इन दोनों के जो पति हैं या जो रक्षक हैं वे हैं अंबुज क्षण। अंबुजया रक्षणम यस्य तम अंबुज क्षणम, जो अंबुजया यानी लक्ष्मी जी का और माता पृथ्वी का रक्षण करते हैं, रक्षा करते हैं, वे हैं भगवान। तो अर्डिनरी तम अद्भुतम बालम, ये अद्भुतम सब जगह जाएगा। इनका आंख जो है वो भी अद्भुत है, इनका दृष्टि जो है वो भी अद्भुत है। भगवान, भगवान के मुखारबिंद से पांच बाण निकलते हैं, पुष्प बाणाय धीमहि, ये पांचों बाण से बेच सकते हैं, और इसमें एक है भगवान का दृष्टि, चितवन कपोल भ्रुकुटी, तो भगवान का ये इक्षण देखना, देख करके भगवान रक्षा कर सकते हैं, भगवान के दृष्टि से रक्षा हो सकता है। भागवतम में अन्यत्र वर्णन किया गया कि भगवान अपने दृष्टि से लोगों का रक्षा करते हैं। तिजोरी में रखा गया धन चोरी हो जाता है, लेकिन रोड पर पड़ा हुआ धन भगवान की रक्षा में रक्षित रहता है, भगवान रक्षा करते हैं, सबका रक्षा भगवान करते हैं। तो ये है भगवान अंबुज क्षण। अब आगे आया है चतुर्भुजम, उनका पहले तो बालक का रूप, अभी आंख से वर्णन कर रहे हैं। कोई प्रश्न है पैर से क्यों नहीं वर्णन कर रहे हैं? देखिए इसको देख रहे हैं वसुदेव जी, सुखदेव जी भी देख रहे हैं लेकिन वसुदेव जी के दृष्टि से। आपके बगल में कौन सो रहा जगह था उनको? मंगलारती आए थे? मंगलारती आए थे? नहीं, तभी सो रहे हो। जैसा कि भागवतम के प्रथम स्कंद के आठवें अध्याय में कुंती माता प्रार्थना की, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिनी, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रय, उसके तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि समानतया हम लोगों को चाहिए भगवान का दर्शन उनके पैरों से करना, लेकिन माता कुंती भगवान के नाभि से प्रणाम कर रही, लेकिन बुआ जी थी ना, भगवान को लज्जा लग जाता, तो इसलिए छोटे लोगों को आंख में नहीं देखना चाहिए, पैर में देखना चाहिए, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो छोटे के पैर में देखेंगे तो छोटे को शर्म लग जाएगा, तो बड़े लोग आशीर्वाद देने के लिए ऊपर से देखते हैं, तो वसुदेव जी बाप है ना, तो ऊपर से देख रहे हैं, कहां से? आंख से देख रहे हैं। कहते हैं अम्बुज क्षण, मतलब पूरा ही देख लिए, अब नीचे कहते चतुर्भुजम, भगवान चतुर्भुज रूप से आए थे, चत्वारो भुजा क्रियाशक्तो यस्यः, यानी चारों जो भुजा हैं भगवान गोलोक बिहारी नहीं, चतुर्भुज वाले भगवान आए हैं, संकर्षण देव यानी वासुदेव मां बलराम जी आए हैं, किस रूप में आए हैं? वासुदेव के रूप में, तो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में आए हुए हैं, ये प्रमाणित करने के लिए नारायण आए हुए हैं चतुर्भुज रूप में। और काम क्या है? चार काम है, मुक्ति दान करना, असुरों का वध करना, वंश की वृद्धि करना और धर्म का रक्षा करना, ये चार हाथों का, ये चार हाथ इसके प्रतीक हैं कि भगवान क्या करते हैं, चार हाथों से मुक्ति देते हैं भक्तों को, असुरों का वध करते हैं। यदि असुरों का भी मुक्ति होता है, आज बड़ा सुंदर मैं एक बात समझ में आया कि जिस असुर का गला भगवान स्वर्षन चक्र से काटते हैं उसी का मुक्ति होता है, अन्य का नहीं। तो ये मुक्तिदाता भगवान है, असुरों का वध करने के लिए, वंश का वृद्धि करने के लिए और धर्म का रक्षा करने, ये चार भुज से। घातको रक्षतो च उक्तो विरोधो अभियति संकटे वेदोक्तम द्विविधम ज्ञानम भक्ति भगवत तथा। भगवान के जो दो भुजा हैं, एक घातक हैं और दो भुजा रक्षक हैं, एक ही साथ में काम कर सकते हैं। परीक्षित महाराज पर भगवान आक्रमण भी करा दिए, किससे? कौन आक्रमण किया था परीक्षित महाराज पर? जो गर्भ में थे अवस्थामा, और भगवान रक्षा भी कर दिए, एक ही साथ दोनों काम कर दिए। ये है चारों हाथ चतुर्भुजम। अब आगे देखिए, कहते हैं शंख गदा उत आयुधम, शंख चक्र गदा पद्म नहीं कहा गया, चारों नहीं कहा गया है, केवल दो ही का नाम है, शंख गदा दो ही चीज है बस। तो कोई कह सकता है कि फिर पद्म और चक्र कहां चला गया? तो इसका वर्णन इस प्रकार से है कि शंख और चक्र में, चलिए शंख चक्र उदा, उदा मतलब उठा हुआ, ऊंचा। अन्य विष्णु मूर्ति में आप देखेंगे भगवान ऐसे ही है ना, लेकिन जब देवकी और वसुदेव के यहां आए तो यहां पर सुखदेव को स्वामी उदा कहते हैं, उठा हुआ। देखिए देखेंगे ये हाथ उठा हुआ है भगवान का, भगवान का चारों हाथ उठा हुआ है, शंख चक्र गदा पद्म ये सब उठे हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि शंख चक्र गदा पद्म से देखा जाए तो शंख जो है ये प्रकृति के जो पांच अवयव हैं, पृथ्वी, हवा, आकाश, अग्नि और जल। शंख जो है वह पानी का अवयव है, पानी से शंख प्राप्त होता है। जो कमल है वो पृथ्वी और पानी का अवयव है, इसलिए शंख से उसमें कमल अपने आप आ गया। शंख कहने का मतलब कमल भी आ गया। आचार्य लोग, वैष्णव लोग समझ, सुखदेव परिचित महाराज समझ गए, शंख कहने का मतलब कि वहां पर कमल और शंख दोनों है। उसके बाद गदा और चक्र। चक्र जो है वह अग्नि का घोतक है और गदा जो है वो वायु का घोतक है। तो गदा कहने से आ गया ऑटोमेटिकली चक्र, क्योंकि अग्नि और अग्नि के ऊपर वायु। तो इस प्रकार से आचार्य गर्भण किए हैं कि चक्र जो है अग्नि का घोतक है, गदा जो है वायु का घोतक है, पद्म जो है वो पृथ्वी का घोतक है और भगवान शंख लिए हैं वो जल का घोतक है। अब इसमें देखिए दो ऊपर है और दो नीचे है। दो ऊपर कौन कौन है तो वह है चक्र और शंख। ये वासुदेव का यह पहचान है जिसमें शंख चक्र ऊपर हो। ये क्या होता है, दाहिना हाथ ना है? तो इसमें चक्र है, इसमें शंख है और इसके नीचे गदा है और इसके नीचे पद्म है। लेकिन ये चारों विनाश करते हैं, नाचते हैं। कई किसके अर्थ हैं, दो अर्थ मैं बताऊंगा। शंख और पद्म से भक्तों का आनंद और उत्साह बढ़ता है। शंख से भगवान उत्साह बढ़ाते हैं। भगवत गीता में आप लोगों ने सुना होगा जब दुर्योधन हतोत्साहित हो गया और गुरु द्रोण और भीष्म के पास जा रहा था तो भीष्म पितामह, हनुमान जी, ओ हनुमान जी समुद्र में डूब जाकर मर जाओगे, लंका नहीं पहुंचोगे, सोओगे तो। तो मैं क्या बोल रहा था हनुमान जी से पहले, हाँ नहीं नहीं आगे आप लोग ने भीष्म पितामह शंख बजाए। क्यों बजाए? दुर्योधन के उत्साह को बढ़ाने के लिए। तो शंख का काम है भक्तों का उत्साह बढ़ाना। और जो कमल है वो शीतलता प्रदान करता है, आनंद की प्राप्ति होती है कमल से। उतना ही नहीं, कमल व्यक्ति को शुद्ध रखता है। कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, कितना भी जल आ जाए लेकिन कमल हमेशा कहां रहता है, जल से ऊपर रहता है। वैसे ही भगवान संसार में आने के बाद भी संसार उनका स्पर्श नहीं करता है, संसार से ऊपर रहते हैं। इसलिए भगवान के समस्त अंगों का उपमा कमल से किया गया है। चरण कमल, नाभि कमल, हस्त कमल, मुख कमल, नयन कमल, सब कमल से भगवान का उपमा किया गया है। तो कमल शुद्धता और आनंद का घोतक है। तो भगवान का दर्शन वही कर सकता है जो शुद्ध है, और कमल से भगवान आनंद देते हैं। तो देवकी वसुदेव निसंदेह शुद्ध हैं, तो उन लोगों को आनंद देने के लिए। और शंख और गदा और चक्र का तो आप जानते हैं क्या काम है, वो तो उनका भी काम है। जैसे कल भीमा प्रभु क्लास दे रहे थे गिरिराज गोवर्धन का, शास्त्र में ऐसा वर्णन किया गया है कि माधुर्य में जब संदेह उत्पन्न हो जाता है तो ऐश्वर्य अपने आप आ जाता है। यशोदा मैया को संदेह हो गया कि कृष्ण मिट्टी खाया है, मैया को विश्वास नहीं हुआ, मैया का मुंह खोलो तो मैया को संदेह हो गया था। तो भगवान मुंह खोले तो मैया ने क्या देखा? मुस प्रमाण देख लिया, भगवान के स्वर का दर्शन कर लिया। ब्रह्मा जी को संदेह हो गया, एक साल तक गाय बछड़े को चुरा कर रखे। भगवान ने क्या किया? वैसे ही गाय बछड़ा व्यवस्था कर दिया, ईश्वर प्रकट हो गया। इंद्र को संदेह हो गया कि अरे नंद का छोरा आपने क्या समझता है, हमारा पूजा बंद करा दिया। वो संदेह हो गया तो भगवान अपना ईश्वर जी दिखाए इंद्र को। सब ब्रजवासी लोग नहीं समझे, लेकिन भगवान अपने ईश्वर्यों के साथ में थे। और ईश्वर्यों में पहले आते हैं शंख, चक्र, गदा और पद्म। ये भगवान गिरिराज को धारण किए थे, जितने भी ग्वाल बाल वहां पर थे वो लोग फेस्टिवल मना, जन्माष्टमी मना रहे थे, फेस्टिवल मना रहे थे। तो वहां पर शंख और पद्म काम कर रहा था और गदा और चक्र ऊपर काम कर रहा था। कैसे? इंद्र ने अपना विशाल काय मेघ भेजा था। गोपाल चंपू में वर्णन है कि यह वर्षा छोटा छोटा नहीं था, यह पिलर के समान इतना मोटा मोटा वर्षा आ रहा था ऊपर से। और गदा अपना काम कर रहा था, तोड़ रहा था। उसके बाद नीचे आया जब जल के रूप में, तो पूरे गिरिराज जी को चक्र छाया हुआ था ऊपर से। तो जैसे ही वर्षा होता था बूम, वाष्पीकृत हो जाता था, सब सब वाष्प बन जाता था चक्र के चलते। सब बादल गए इंद्र के पास कि महाराज कुछ नहीं होने वाला है, बिजली सब सब गए, पता नहीं क्या हो रहा है, एक भी बूंद नहीं नीचे गिर रहा है। तो वहां शंख, चक्र, गदा, पद्म चारों थे, क्योंकि इंद्र को संदेह हो गया। माधुरी में संदेह होने से ब्रज में जो लोग हैं या जो निवास करना चाहते हैं उनमें माधुरी की प्रधानता होनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि रुपया पैसा से कोई ब्रज में निवास नहीं कर सकता है। आजकल बॉम्बे वाले घर बना रहे हैं वृंदावन में रहने के लिए रुपया पैसा से, उसे ब्रज ब्रज में निवास करने का कोड है बड़ा सिंपल, विषय छाड़िया कवे शुद्ध अवे मन तबे हम हेरुम श्री वृंदावन। विषय वासना को छोड़ करके जब छोड़ दोगे, छोड़ने का मतलब विषय वासना की आसक्ति, वस्तु को नहीं छोड़ना है, वस्तु की आसक्ति को छोड़ना है, तब ब्रज में निवास के अधिकारी बनोगे। मैं देखा हूं बहुत भक्त लोग बंबई से जाते हैं, अपना घर बना लेते हैं और फिर क्या करते हैं, बिजनेस करना शुरू करते हैं। कोई डॉलर चेंज करता है, कोई घुमाता है चौरासी को, उस परिक्रमा कराता है, क्यों? पैसा के लिए। तो बंबई में कर अच्छा है, वहां वृंदावन जाकर करने भजन करने जाना चाहिए, ये सब करने थोड़ा जाना चाहिए। वृंदावन इसके लिए नहीं है। ऐश्वर्य में वृंदावन को नहीं समझ सकते हो, जैसे इंद्र नहीं समझ पाए, केवल माधुर्य में समझ सकते हो। चाहे गाय रहो, चाहे हरिण रहो, चाहे ग्वाल बाल रहो, चाहे लता पता और वृक्ष रहो, लेकिन माधुर्य भाव में समझ सकते हो, ऐश्वर्य भाव में नहीं। तो मथुरा में ऐश्वर्य है लेकिन वृंदावन में माधुर्य है। तो ये चारों जो आयुध हैं, युत आयुध, शंख, गदा, युत आयुध, अब दो चीजों का, ठीक है चक्र और गदा तो समझ सकते हैं मारने पटने के लिए, तोड़ने के लिए, लेकिन कोई कह सकता है कि ये शंख और कमल कैसे शत्रुओं को विनाश करता है? श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं कि शंख, भगवान जब शंख बजाते हैं तो दुष्टों का हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, बुम गए काम से। भगवान शंख बजा करके दुष्टों को मार डालते हैं। जो कमल है वो कमल पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है, उसमें भार है, कमल में भार है, और उस भार के चलते ये जो कमल है वो रौंद डालता है असुरों को। जिस कमल पर ब्रह्मा जी आए हुए हैं, और ब्रह्मा जी कौन है? सृष्टि का भार ब्रह्मा जी पर है, और ब्रह्मा जी का भार किस पर है? कमल पर है। तो आप समझ सकते हो कमल कितना पावरफुल है, वो ऑर्डिनरी कमल नहीं है, वो असुरों को खत्म कर देता है। तो ये शंख चक्र गदा पद्म। अब यहां पर उद आयुध का एक और दूसरा व्याख्या सुने। उद आयुध, उदक मतलब पानी, ये पानी जो है, जल जो है, उसका स्वभाव है कोई भारी वस्तु जल में गिर जाता है तो क्या जल करता है? बोलो ना, डुबा देता है। भारी वस्तु जल में गिरे तो क्या करेगा? जल डुबा देगा। हल्का होगा तो उतरा जाएगा, लेकिन भारी होगा तो डुबा देगा। तो वैसे ही ये असुर लोग, बदमाश लोग, अब ये अपने अभिमान के भार से बहुत भारी होते हैं। उनमें अभिमान का भार होता है, उदंड होते हैं, पाषाण हृदय होते हैं। ऐसे पाषाण हृदय भारी, जिनके भार से पृथ्वी भी डगमगाने लगती है, वे लोग भगवान के आयुध से, भगवान अपने आयुध से उनको क्या करते हैं? डुबा डालते हैं। जैसे पानी भारी को डुबा देती है, चल नीचे बैठ, वैसे ही उदक आयुध, उदक मतलब जल और आयुध मतलब डुबा देना, भगवान डुबा देते हैं। तो ये रहा शंख गदा उद आयुधम। अब आगे बढ़ते हैं। श्रीवस्त लक्ष्म गलसो भी कौस्तुभम। श्रीवस्त लक्ष्म, श्रीवस्त का दो अर्थ है, श्री मतलब लक्ष्मी जी और वस्त मतलब छाती, बाम भाग। भगवान के बाम भाग जहां पर हार्ट होता है, हृदय होता है, जहां पर हृदय में लक्ष्मी जी का निवास स्थान है, वह है श्रीवस्त। लेकिन यहां पर लक्ष्म कहा गया है, लक्ष्म मतलब चिन्ह। लक्ष्म के दो अर्थ होते हैं, एक तो चिन्ह और एक पोजीशन। वह लक्ष्मी जी का पोजीशन है, भगवान का वाम भाग जो है वह लक्ष्मी जी का पोजीशन, यह श्रीवस्त कहलाता है। और दूसरा अर्थ है, लक्ष का मतलब चिन्ह यानी दाग। कैसे? एक बार मुझे छोटा ऑपरेशन हुआ, देखो दाग लग गया, अभी तक दाग है, खत्म ही नहीं हुआ, तो दाग छूट जाता है। तो वैसे ही भगवान के वक्षस्थल पर एक दाग है। किसका दाग है? श्रीवस्त का। भृगु मुनि का एक नाम है श्रीवस्त, श्री जस्य वस्ता इति श्रीवस्त। वस्ता मतलब पुत्री, श्री मतलब श्री, श्री जिनकी पुत्री हो उन्हें कहते हैं श्रीवस्त, और वे हैं भृगु मुनि। आप लोगों को मालूम होगा कि भृगु मुनि एक बार इलाहाबाद से, सब लोग प्रयाग से, सब लोग बैठे हुए थे पता लगाने के, अब कौन सबसे बड़ा है, ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन बड़ा है ना। तो भृगु जी बेड़ा उठाए थे और जाकर के भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर पैर रख दिए थे, और लक्ष्मी जी का आस्थान, लक्ष्मी गुस्सा आ गया, लक्ष्मी को उलान दे दी। भगवान वैष्णव का मान रखने के लिए, श्रीवस्त का मान रखने के लिए उनका जो चरण चिन्ह है आज भी भगवान अपने पास रखे हैं। तो यह श्रीवस्त जो चिन्ह है वो भृगु मुनि के चरण चिन्ह को श्रीवस्त कहा जाता है, जिसे भगवान हमेशा धारण करते हैं। गलसो भी कौस्तुभम, भगवान अपने गले में वैजयंती माला पहनते हैं और कौस्तुम मणि, ये मणि ऐसा नहीं कि हम बाहर से पहन लेते हैं, वो इन बिल्ड है, वो मणि जो है वो कोई निकाल ही नहीं सकता है, हम लोगों का चेन है जो कुछ निकाल सकते हैं, भगवान का वो निकाल सकते हैं। और भगवान वैजयंती माला धारण करते हैं, जिस माला में पांच कलर के फूल हो उसे वैजयंती माला कहते हैं, हैं? तो भगवान पांच कलर वाला फूल, इसमें कितना है, एक दो तीन चार कलर है, एक छूट गया है, ये वैजयंती नहीं हुआ अभी, वैजयंती से कम है, एक और होना चाहिए। तो कौस्तुभम पीताम्बरम, भगवान पीतवासी हैं। एक आचार्य ने कहा है कि पीत जो है वो शुद्धता का परिचायक है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। पीत जो, ये पीत मतलब ये पीत नहीं हुआ, ये पिता है, नए भक्त लोग बने वही पीत नहीं हुआ। जब सोना को गलाओगे, जब गल जाता है और जो उसका रंग होता है वह कहलाता है पीतवर्ण। इसका मतलब कि सोना की गंदगी जब निकल जाती है, जब शुद्ध हो जाता है तो वह पीतवर्ण कहलाता है। तो भगवान पीतांबर धारण करते हैं, ये वस्त्र से तो पहचान है ही पीतांबर, लेकिन इसका दूसरा अर्थ है भगवान उन्हीं लोगों को अपनाते हैं जो संत हैं, जिनका हृदय शुद्ध हो चुका है। श्रोताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्तं हि अभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। जिनका सुहृत, जिनका हृदय कैसा हो गया है, सुहृत, फर्स्ट क्लास का हृदय हो गया है, उन्हीं लोगों को भगवान धारण करते हैं, भगवान उन्हीं लोगों को अपनाते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग ऐसा परिश्रम करें, ऐसा कार्य करें, भगवत कथा सुन करके, भगवान के नाम का कीर्तन कर करके, कि भगवान हमें अपना ले, हम भगवान के पीतांबर हो जाएं। पीतांबरम शांद्रपयो सौभगम, भगवान अत्यंत ही सुंदर दिखने, पीतांबर से भगवान श्याम ने सरोने हैं और पीतांबर धारण किए हैं। अब ब्लू धारण करते तो उतना गेटअप नहीं होता, पीतांबर धारण किए हैं। राधा रानी तप्त कांचन है, वो ब्लू धारण करते हैं। बलराम जी तप्त कांचन है, वो ब्लू धारण करते हैं, क्योंकि कृष्ण ब्लू हैं, तो कृष्ण को राधा रानी और बलराम धारण करते हैं। और कृष्ण किसको धारण करते हैं, राधा रानी को और बलराम को। जमुना जी कृष्ण को धारण करती हैं, इसलिए जमुना जी के जल कैसा है, नील वर्ण का है, श्याम वर्ण का है। तो सांद्र पयोद सौभगम, बड़ा ही सुंदर भगवान का एकांति लग रहा था। अब उनके सजावट का, भगवान महाअर्ध वैदुर्य किरीट कुंडनम, भगवान मुकुट पहने थे, वैदुर्य मणि से बना हुआ माला पहने थे। इस प्रकार से तुषा परिशक्त सहस्त्र कुंतलम, और भगवान के कमर में चमकीली पेटी था, कलाइयों में कंकड़ था। ऐसे भगवान के स्वरूप को देख करके विरोचमानम वसुदेव इच्छितम, इसको देख करके वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, विरोचमानम देख करके बड़े खुश हुए, वसुदेव इच्छितम स विस्मयो फूल विलोचन हरि। भगवान को देख करके कह रहे थे मेरा बेटा है, तो एक बार उन्हें बेटा का रूप, पहले तो भगवान के रूप में देखे और बेटा के रूप में देख रहे हैं। सुतम विलोक्य अनकदुंदभी तथा, वसुदेव जी का एक नाम है अनकदुंदभी। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था तो दुंदुभिया और नगाड़े बजे थे आकाश से, क्योंकि भगवान के पुत्र होने वाले हैं, तो वही दिलाएगा विलोक्य अनकदुंदभी। ये अनकदुंदभी नाम तब सार्थक होगा जब भगवान उनके बेटे होंगे। तो सूतम विलोक्य, अपने बेटे के रूप में देखिए। तो देखिए वसुदेव जी का दो भाव हुआ, एक भगवान का भाव और एक बेटा का भाव। अब तक से भगवान का दर्शन किए, अब यहां पर बेटे का भाव देख करके क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कृष्णावतार उत्सव संभ्रमो संभ्रमो स्प्रियन मुदा दिजेभ्यो अयुता अयुतम आप्लुतो गवाम। यह वसुदेव जी बेटा को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, बेटा के हनुमान जी आपका बेटा हुआ था, फिस्ट दिए थे ना खुश होकर के, नहीं दिए थे फिस्ट? अरे बेटा हुआ था आपने फिस्ट भक्तों को नहीं दिया, मिठाई नहीं खिलाया था, फिस्ट दिए थे ना, तो वही मैं बोल रहा हूं, फिस्ट दिए थे ना, तो वैसे वसुदेव जी फिस्ट देने जा रहे हैं, जगह रहिए सजाओगे फिस्ट नहीं मिलेगा, ऐसे भी आज फास्टिंग है। कृष्णा अवतारो उत्सव, भगवान कृष्ण के अवतार का उत्सव मनाते हुए संभ्रम्य वसुदेव जी तहे दिल से, नंद बाबा को महामना कहा गया है और यहां पर इनको संभ्रमा मतलब उदार चित हृदय से उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को अयुत आप्लुत गवाम, 10,000 का एक अयुत होता है, तो अयुत मतलब बहुवचन, लाखों गाय वसुदेव जी ने दान दिया। कोई प्रश्न कर सकता है, अरे वो तो कारागृह में थे, वो गाय दान कैसे दे सकते हैं? मैं पिछले दिन बताया था कि मन से भी भगवान के लिए कुछ किया गया जो चीज है वो सार्थक होता है। वसुदेव जी मन से ही दान दिए और बाद में जब मुक्त हो गए तो पहला काम किए सही में दान दिए, पहले तो मन से दिए। तो हम भक्तों को भी चाहिए मन से दे देना, पैसा नहीं लगता, मन से दे दो, आज जन्माष्टमी है मन में कुछ मान लो। तो इस प्रकार से वसुदेव जी भगवान को बालक के रूप में देख करके क्या किए, यह बात यहां पर वर्णन किया गया। अब भगवान को भगवान के रूप में देखे, देखिए उनके साथ में क्रिया और ज्ञान दोनों एक साथ उत्पन्न हुए थे। हां, अब भगवान को भगवान के रूप में देखकर क्या किए और बेटा के रूप में देखकर क्या किए, भगवान को बेटा के रूप में देखकर क्या किए वसुदेव जी, अभी तो बताया ना, गाय दान दिए उत्सव मनाए, और भगवान को भगवान के रूप में देख करके उनने क्या किया वो अंतिम श्लोक में मैं बताने जा रहा हूं, फिर बाद में पूछूंगा चारों श्लोक में क्या हुआ है, भूलना मत आप लोग, याद रखना। तीसरा श्लोक में भगवान को बेटा के रूप में देखे, अन्य दो श्लोकों में भगवान के सौंदर्य को देखे, 9 और 10 में भगवान के सौंदर्य को देखे, 11वें स्कंद में भगवान को बेटा के रूप में देखे और भगवान के रूप में देखे, तो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों एक साथ जग गई। तो क्रिया शक्ति के रूप में उन्होंने दान दिया और ज्ञान शक्ति के रूप में वे भगवान का अब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए यहां पर विस्मयो शब्द आया हुआ है, विस्मित होकर के अब वे, कोई कह सकता है कि बेटे आप जब देख लिए तो उसका संस्कार करना चाहिए थे कि गर्भ शुद्धि संस्कार इत्यादि, जैसे कि नंद बाबा किए थे जात संस्कार इत्यादि, लेकिन भगवान चतुर्भुज रूप में आए थे, छोटा बालक थे नहीं, तो जात संस्कार का कोई सवाल नहीं उठता है। अब आगे प्रणाम कर रहे हैं, अथे नमस्त अथ एन अस्तौ अवधार्य पुरुषम परम नतांगम कृतधि कृतांजलि स्वरोचिसा भारत सूतिका गृहम विरोचयंतम गतभि प्रभाववीत। अथ संस्कृत में दो शब्द होता है इति और अथ। इति मतलब खत्म और अथ मतलब शुरू। अब शुरू हो रहा है इस स्वर्ज भाव का, यानी ज्ञान शक्ति उत्पन्न हुआ। अब क्या कर रहे हैं? अस्तौ, स्तुति करना शुरू किए भगवान को, भगवान समझ करके अब स्तुति करते हैं। अस्तुतौ औदार्य, चतुर्भुज रूप में थे, उनको भगवान के रूप में देख करके, विष्णु, यहां विष्णु है, परमाराध्य कहां चले गए दोनों? ओके, चलिए इसको छोड़ करके मैं करता हूं। अब भगवान को भगवान देख करके, भगवान कोई प्राकृत पुत्र नहीं है, भगवान का स्तुति करने लगे और प्रणाम करने लगे। कोई कह सकता है कि भगवान, किसी का स्तुति या प्रणाम तो उसको की जाती है जो उम्र में छोटा हो, कद और पद में जो छोटा हो, जो कद, सॉरी, कद पर जो बड़ा हो उसकी स्तुति की जाती है, उसको प्रणाम किया जाता है। जो छोटा हो, वसुदेव जी कद में भी बड़े हैं और पद में बाप लगते हैं, पद में बाप हैं और कद में कृष्ण से बहुत बड़े हैं, तो फिर क्यों प्रणाम किए? तो उसके लिए यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं औदार्य, मतलब भगवान को भगवान समझ करके, पूर्ण पुरुषोत्तम समझ करके वे प्रणाम किए। एक होता है इमोशन और एक होता है डिवोशन। हम लोग कभी कभी इमोशन में कुत्ते को ही भगवान कह देते हैं, अरे और नहीं तो अपने छोटे बदकन, ये लाला जी हैं, लड्डू गोपाल हमारे घर में आ गए हैं, बाप मां बड़े खुश होते हैं ना, कहते हैं कि छोटे जो बच्चे होते हैं भगवान के स्वरूप होते हैं। ये सब इमोशन है, तो लोग इमोशन का प्रमोशन करते हैं, डिवोशन का प्रमोशन नहीं करते हैं। लेकिन हम हरे कृष्ण वाले भक्त लोग हैं, वो डिवोशन का प्रमोशन करते हैं। आजकल इसीलिए हम लोगों को अपना खानदान समझना चाहिए। हम लोग जिस खानदान के हैं, हम लोग ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय के हैं, और ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में राधा कृष्ण का पूजा होता है। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जन्म मरणे गति आर नहीं मोर। लेकिन मैं देखता हूं हमारे कांग्रीगेशन डिवोटी और लोग लड्डू गोपाल का पूजा करते हैं, ये पता नहीं कहां से आ गया। किस भागवतम में लड्डू गोपाल का वर्णन है? माखन चोर का वर्णन है, लेकिन लड्डू गोपाल कहां से आ गए? कोई बताए हमको किस शास्त्र में लड्डू गोपाल लिखा हुआ है? तू कहां चला गया भाई?
गाड़ी रेडी करो, बृहस्पति निकलना है। हाँ, अच्छा वाला रखो, चल खड़ा मत रखो, बल्कि भाई अपना ये लोग रखो, पर्सनल लाइफ रखो, जो गाड़ी रेडी करो।
तो लड्डू गोपाल कहीं नहीं है, ये पुष्टि मार्ग में है, वो अपना संप्रदाय नहीं है। अपना संप्रदाय क्या है? ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। संप्रदाय विहीनस्य, जो संप्रदाय विहीन होकर कितना भी मंत्र पूजा करे, निष्फलम भवेत, वो निष्फल जाता है।
आगे सर भाई, लेट आए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, जय श्री राधे, हरे कृष्ण।
लोचन प्रभु, तो यहां पर वर्णन किया गया है अवधार्य, समझ कर करके। वसुदेव जी समझे और समझदारी के अनुसार ही उनका वे प्रणाम या पूजा स्तुति कर रहे थे। आजकल लोग चमचागिरी करने के लिए खूब बड़ा बड़ा बना देते हैं, वसुदेव जी वैसे नहीं किए, जैसे भगवान हैं वैसे ही। इसलिए क्या परम नतांगम कृतधी, धी मतलब बुद्धि, शुद्ध बुद्धि से वसुदेव जी ने भगवान को यथावत रूप से प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? नतांगम, नत अंग, अष्टांग प्रणाम होता है, सष्टांग प्रणाम होता है, नतांग प्रणाम होता है। सष्टांग प्रणाम, हनुमान जी सामने बैठोगे सोओगे तो मैं भी सो जाऊंगा, फिर गाड़ गड़बड़ क्यों जाएगी। सष्टांग मतलब हाथ पैर वक्षस्थल और सिर, ये छह अंग, और अष्टांग मतलब मन में चिंतन हो और मुख से हे कृष्ण करुणा सिंधु जो भी करते हैं ना प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, ये अष्टांग को। उसके बाद यहां नतांग, ऐसे चाहे स्त्रियां जो प्रणाम करती है वो भी नतांग कहलाता है। कृतांजलि, लेकिन सब में हाथ जोड़ा रहना चाहिए, प्रणाम में हाथ जोड़ा रहना चाहिए। सष्टांग करो तो भी, अष्टांग करो तो भी, खड़ा होकर कहते हो हरे कृष्णा। एक हमारे भक्त हैं, कहते हैं कि यहां पर दो नली का बंदूक होता है ना, ये दस नली का बंदूक है, हैं? ये दस नलिया बंदूक है, तो माया देवी अपने आप भाग जाएगी। कोई गुस्सा में होगा कहा प्रभु हरे कृष्णा, ये दस नली चला गया शांत हो जाएगा, हैं? तो हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, झुककर प्रणाम करो तो भी हाथ जोड़कर के हमेशा। कृतांजलि, स्वरोचिसा भारत सूतिका गृह विरोचयंत गत भी प्रभाव भी। तो इस प्रकार से जब वे वसुदेव जी प्रणाम कर रहे थे तो भगवान के सौंदर्य से पूरा कारागार जो था वह जगमगा गया था, वसुदेव जी का जीवन भी जगमगा गया था। और गत भी प्रभावित, यानी भयमुक्त हो गए। कंस का भय था, देवकी वसुदेव को काठवा बेटा है मारेंगे, लेकिन उस समय भगवान वो भयमुक्त हो गए। तो श्रीपाद जी को स्वामी कहते हैं उच्च अस्तोत्रम उच्च कर्तव्यम, जब भी हम प्रणाम करें तो उच्च शब्द से जोर से बोलना चाहिए, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पथ हे कृष्ण करुणा सिंधु बोल करके। अस्तोत्रम कायाम मनोभी कर्तव्यम, यानी मनसा वाचा कर्मणा तीनों से स्तुति करना चाहिए। और वसुदेव जी किए, मनसा वाचा कर्मणा तीनों से हम स्तुति भगवान का करेंगे डेली, तब क्या होगा गत भी प्रभावित, हम लोग सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। गत भी खत्म हो जाता है, और प्रभावित मतलब प्रभावित जो कंस का जो प्रभाव था, उस दुष्ट का प्रभाव था वह खत्म हो गया। और दूसरा अर्थ है भगवान के प्रभाव से भय रहित हो जाएगा व्यक्ति, भगवान के प्रभाव से किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा व्यक्ति को। जब भगवान की जब मनसा वाचा करुणा से हम भगवान को प्रणाम करें, तो इस प्रकार से संक्षिप्त में मैंने आप लोगों को यह चार श्लोकों का वर्णन किया, जिसमें भगवान के वर्णन किया गया भगवान के सौंदर्य का। अब मुझे जाना है, इसलिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।